नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 लाख से अधिक लाभार्थी परिवारों के बीच प्रथम किस्त के रूप में 1,200 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की। राज्य सरकार ने भागलपुर में गंगा नदी पर सुल्तानगंज अगवानी घाट के बीच निर्माणाधीन पुल के ध्वस्त होने के मामले में निर्माण एजेंसी को प्रतिबंधित किया। दोषी अभियंताओं के खिलाफ आरोप गठित। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में राजद के बर्खास्त विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह की विधान परिषद सदस्यता फिर से हुई बहाल। और राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के लिए बिहार प्रवासी कामगार ऐप लॉन्च किया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 लाख लाभार्थी परिवारों के बीच प्रथम किस्त की राशि अंतरित की। श्री कुमार ने लाभार्थी परिवारों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से 1,200 करोड़ रुपए भेजे। प्रथम किस्त के रूप में प्रति परिवार 40,000 रुपए दिए गए हैं। इस अवसर पर श्री कुमार ने लाभुक परिवारों को बधाई दी। साथ ही उन्होंने अधिकारियों से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का सही ढंग से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने को कहा, ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। इधर जिला मुख्यालयों में समारोह आयोजित कर प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों का गृह प्रवेश कराया गया। राज्य सरकार ने भागलपुर में गंगा नदी पर सुल्तानगंज अगवानी घाट के बीच निर्माणाधीन पुल के एक हिस्से के ध्वस्त होने के मामले में निर्माण एजेंसी को प्रतिबंधित कर दिया है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि मामले में दोषी पाए गए अभियंताओं के खिलाफ आरोप का गठन कर विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।
अगवानी सुल्तानगंज गंगा पुल के गिरने की घटना 2 बार हुई। जांच के उपरांत पुल के डिजाइन में त्रुटि पाई गई। तत्कालीन अपर मुख्य सचिव के प्रतिवेदन और वर्तमान अपर मुख्य सचिव के द्वारा समीक्षोपरांत प्रस्तुत संचिका में कार्य निर्वहन में दोषी पाया गया 2 वरीय पदाधिकारी अभियंता तथा उप मुख्य अभियंता पर भी आरोप गठित कर विभागीय कार्रवाई और त्रुटि इंजीनियर द्वारा लापरवाही बरतने के कारण काली सूची में डालने तथा परियोजनाओं से जुड़े संवेदक एसपी सिंघला को अगवानी सुल्तानपुर गंगा पुल के पुनर्निर्माण तक एजेंसी को डीबार करने हेतु आदेश हमने दे दिया।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में राजद के बर्खास्त विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह की विधान परिषद सदस्यता फिर से बहाल कर दी गई है। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने आज सदन में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उन्हें बर्खास्त रहने की अवधि के वेतन और अन्य भत्तों का लाभ नहीं मिलेगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भावभंगिमा की नकल करने के आरोप में सुनील कुमार सिंह की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। विधान परिषद के इस फैसले को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। विधानसभा में आज से वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट पर चर्चा की शुरुआत हुई। चर्चा कल भी जारी रहेगी। भोजनावकाश के बाद विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने कहा कि सदन में बजट पर 240 मिनट चर्चा होगी। इससे पहले आज सुबह सदन में प्रश्नकाल सुचारू रूप से चला। प्रश्नकाल के दौरान राजद विधायक मुकेश यादव ने गंगा जल की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राज्य में किसी भी जगह गंगा का पानी न तो पीने और न ही नहाने के लायक है। वन और पर्यावरण मंत्री सुनील कुमार ने स्वीकार किया कि शहरों से निकलने वाले अनुपचारित गंदे पानी के कारण गंगा और उसकी सहायक नदियों में बैक्टीरिया की मात्रा मानक स्तर से अधिक है। उन्होंने सदन को बताया कि नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए 32 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। एक प्रश्न के उत्तर में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि शिक्षकों के स्थानांतरण के प्रक्रिया अगले 2 महीने में पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि तबादले से असंतुष्ट शिक्षकों के लिए जिला, प्रमंडल और राज्य स्तर पर कमेटी का गठन किया गया है।
कोई असंतुष्ट है अपने पोस्टिंग से तो हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है और उसी तरह कमिश्नर जो डिवीजन में उनकी अध्यक्षता में और अंतोगत्वा हम लोगों ने एक सेक्रेटरी के स्तर पर एक कमेटी मुख्यालय में बनाई है कि सारी प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद भी अगर किसी शिक्षक शिक्षिका को फिर भी शिकायत रह गई है तो अपना वो पिटीशन दे सकते हैं, कर देंगे।
इधर आज सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले पीपीएससी की 70वीं संयुक्त एकीकृत प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा फिर से करवाने की मांग को लेकर राजद और कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने विधानमंडल परिसर में प्रदर्शन किया। राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के लिए आज बिहार प्रवासी कामगार ऐप लॉन्च किया। ऐप का लोकार्पण करते हुए श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को इस ऐप के जरिए रोजगार, कौशल विकास, सरकारी योजना और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि सरकार ने 20 लाख प्रवासी मजदूरों के पंजीकरण का लक्ष्य रखा है।
बिहार प्रवासी कामगार ऐप के रूप में हम लोगों ने लॉन्च किया है और ये बिहार प्रवासी कामगार का डेटा होना कितना जरूरी है ये कोरोना ने बताया है। और जो मेरे एक्चुअल बिहार के भाई हैं, जो लाभार्थी हैं, उनके खाते में जाए डीबीटी के माध्यम से, उनका एक डेटा संग्रह करने के लिए कि एक्चुअल में बिहार के कितने ऐसे हमारे प्रवासी भाई हैं जो बिहार से बाहर रहते हैं, सबकी चिंता करते हुए और उन लोगों को भी डिटेक्ट करके उनके सरकारी योजनाओं को लाभ पहुंचाया जाए।
पंचायती राज मंत्रालय ने आज आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायत पहल की शुरुआत की। पंचायती राज राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा कि यह पहल मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य प्रत्येक जिले में कम से कम एक आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायत की स्थापना करना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं और अब एक जरूरी सूचना।
आकाशवाणी का प्रादेशिक समाचार एकांश पटना हिंदी भाषा के लिए आकस्मिक समाचार संपादक और आकस्मिक प्रसारण सहायक का पैनल तैयार करने के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि 7 मार्च है। अधिक जानकारी newsonair.gov.in के वैकेंसी सेक्शन या प्रादेशिक समाचार एकांश पटना के एक्स हैंडल @airnews_patna से प्राप्त की जा सकती हैं।
अब बढ़ते हैं समाचारों की ओर। पटना स्थित ललित नारायण मिश्रा आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन संस्थान में आज विकसित बिहार की नींव बजट 2025 विषय पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। परिचर्चा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि केंद्र के बजट के बाद राज्य के बजट में भी कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है।
हम लोगों ने कई चीजों की सेक्टर में चेंजेस करने का प्रयास किया है। जैसे कृषि सेक्टर, कृषि के सेक्टर में हम लोगों ने बाजार, हमारे पास प्रोडक्ट है, हमारे जो किसान है, आज भी पूरे प्रदेश में 57% लोग सीधा खेती पर निर्भर है। तो हम लोगों ने यह तय किया कि आज अभी 1200 करोड़ लगाकर नीतीश कुमार के नेतृत्व में 21 जिले में हम बाजार समिति बना रहे हैं। इसको हम 3800 जिले में बनाने का काम शुरू करेंगे। हम 534 ब्लॉक में तरकारी केंद्र खोलेंगे जिससे कि किसान सीधा जाकर अपने खेत के सामान को बेच सके।
इधर आज पटना में भारतीय उद्योग परिसंघ CII के बिहार चैप्टर की वार्षिक बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में अब निवेश के अनुकूल माहौल है। उन्होंने कहा कि राज्य में नई औद्योगिक नीति लाई जा रही है जिससे उद्योग धंधों के लिए और अनुकूल स्थितियां बनेंगी। समारोह को संबोधित करते हुए उद्योग मंत्री नीतीश मिश्र ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट भविष्योन्मुखी है। उन्होंने कहा कि राज्य में उद्योग को लेकर उत्साहजनक माहौल बना है।
बिहार बजट को देखेंगे तो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है, जहां पे हम एग्रीकल्चर पर भी फोकस कर रहे हैं, विमेन एम्पावरमेंट पर भी हमारा फोकस है, युवा शक्ति पर भी है और एक नए औद्योगिक वातावरण के निर्माण की दिशा में भी हम बढ़ रहे हैं। बिहार ने एक बहुत बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है और ये माननीय मुख्यमंत्री जी के कठिन श्रम से ये संभव हो सका है। और आज जो हम अक्सर इस बात का उल्लेख करते हैं कि उद्योग विभाग जो एक हैशटैग यूज करता है, बिहार है तैयार, सही मायने में नाउ वी आर रेडी फॉर अ टेक ऑफ।
उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज दानापुर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित मेगा एमएसएमई कैंप का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने जीविका दीदी समूह, एमएसएमई और अन्य क्षेत्रों के चिन्हित लाभार्थियों के बीच 40 करोड़ रुपए ऋण वितरित किए। प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है। अधिकांश स्थानों का अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 3 दिनों के दौरान तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। उन्होंने बताया कि 8 और 9 मार्च को किशनगंज, भागलपुर, बांका और जमुई समेत राज्य के पूर्वी भागों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है।
अगले 3 दिनों के दौरान मौसम में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। मौसम आमतौर से शुष्क बना रहेगा। 8 एवं 9 मार्च के दौरान प्रदेश के पूर्वी भाग के जिलों, विशेषकर किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका एवं जमुई में हल्की वर्षा की संभावना है।
पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में आज राजद की ओर से युवा चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि प्रदेश की जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। उन्होंने युवाओं से विधानसभा चुनाव में एकजुटता दिखाते हुए सत्ता परिवर्तन की अपील की। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हुए हादसों में 8 लोगों की मौत हो गई। नवादा जिले के नारदीगंज प्रखंड अंतर्गत राजीव नगर के पास एक बस के ऊपर बिजली का तार टूटकर गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं सारण जिले के खैरा थाना क्षेत्र के कालोपुर गांव में करंट लगने से 1 व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से झुलस गए। वहीं भागलपुर जिले के सुल्तानगंज के वार्ड संख्या 14 में एक घर में आग लगने से 1 बच्चे की झुलसकर मौत हो गई। दूसरी तरफ सारण जिले के अवतारनगर और तरैया थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 2 बच्चे की मौत हो गई। पटना के दरभंगा हाउस में आज छात्रों के 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प और बमबाजी हुई। एएसपी दीक्षा ने बताया कि बम विस्फोट में एक गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। उन्होंने बताया कि घटना में 30 से 40 लोगों के शामिल होने की आशंका है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 लाख से अधिक लाभार्थी परिवारों के बीच प्रथम किस्त के रूप में 1,200 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की। राज्य सरकार ने भागलपुर में गंगा नदी पर सुल्तानगंज अगवानी घाट के बीच निर्माणाधीन पुल के ध्वस्त होने के मामले में निर्माण एजेंसी को प्रतिबंधित किया। दोषी अभियंताओं के खिलाफ आरोप गठित। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में राजद के बर्खास्त विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह की विधान परिषद सदस्यता फिर से हुई बहाल। और राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के लिए बिहार प्रवासी कामगार ऐप लॉन्च किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।